Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shishira Raghavinda Bhavan ki, Shri Gangotri Yamunotri Dham ki, Uttar Kashi Dham ki, मोक्षप्रदायिनी नगरी क्षेत्र काशी धाम की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय निताय निताय और हरि आनंदे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की
जय।
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।
तो आप सबका स्वागत है आज ये
अपना फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं।
Hare Krishna. So we welcome you, all of you, and today we arrived Uttarkashi. So ये उत्तरकाशी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जिस तरह से काशी मोक्ष प्रदायिनी नगरी है, उसी तरह से उत्तरकाशी भी मोक्ष प्रदायिनी नगरी है। जो काशी बनारस काशी बोलते हैं जिसको, वो काशी ईस्टर्न काशी है। उसी प्रकार से ये उत्तर की तरफ होने वाली नॉर्थन काशी है, इसलिए इसका नाम है उत्तर की काशी, उत्तर काशी। जिस तरह से ईस्टर्न काशी में जाने से मोक्ष प्राप्त होता है, वहां के रहने वाले कीड़े को भी, वहां पर रहने वाले जानवर को भी, हर एक व्यक्ति वहां पे मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए हम देखते हैं कई लोग अपना अपने अंतिम समय में कहाँ चले जाते हैं,
काशी
चले जाते हैं। तो लेकिन हम अंतिम समय में नहीं आए, हम तो अपने जीवन के बीच के पड़ाव में इधर आए हैं। तो ये सामने बिल्कुल आपके जो बह रहे हैं, किसी को आप आगे जाके देखेंगे, गौमुख से गंगोत्री निकलती है, और ये गंगोत्री धारा गौमुख से होती हुई उत्तर काशी से आगे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और इसी प्रकार से आगे कई जगह अलकनंदा, मंदाकिनी, ये धाराएं सारी मिलती हैं। आप जाके देखेंगे देवप्रयाग में कि तीन धाराएं मिलती हैं, उनका कलर भी अलग अलग है। और ये जो गंगोत्री है वही धारा उत्तर काशी में है। तो ये उत्तर काशी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारी भक्ति को प्रगति करने के लिए, क्योंकि ये जो स्थान है यहाँ पर भगवान के परम भक्त भगवान शिव यहाँ विराजमान है। आपने पढ़ा भी होगा जब आप आज विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए, कि ये जो विश्वनाथ है ये भगवान शिव देवों के देव महादेव कहलाते हैं ना। कई लोग भगवान शिव को भगवान कहते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं, वो कौन है, देव है, और देवों के देव महादेव है ना। इसीलिए वो स्थान पर सभी को क्या प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। तो अपने अंतिम समय में जब कोई व्यक्ति पूरा जीवन भगवान का भजन किया होगा, तब उस व्यक्ति को क्या करते हैं, शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ये बात सत्य है ना, इसीलिए जब मोक्ष प्रदान करते हैं, तो जो व्यक्ति पूरा जीवन भगवान का नाम जप किया होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे।
जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन भगवान का नाम जप किया होगा तो भगवान शिव का क्या कर्तव्य है कि वो अंत समय में भक्त के कान में आकर, कई लोग बोलते हैं कि अंत समय में हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। लेकिन कहते हैं रामचरितमानस में आता है जन्म जन्म ऋषि तप कराई अंत राम कहे आवत नाही। पूरा जीवन व्यक्ति प्रैक्टिस करता है कि एंड में मैं क्या लूंगा, भगवान का नाम लूंगा। लेकिन अंतिम समय में जब बुजुर्ग शरीर होता है, वृद्ध शरीर होता है, जीर्ण अवस्था होती है, कफ पित्त और वात हमारे गले को पूरा ऐसे पकड़ लेती है, उस समय ऐसी आवाज होती है, उसमें क्या व्यक्ति का नाम आएगा, क्या भगवान का स्मरण होगा, है ना। आप सोचिए अगर आज कोई परिस्थिति खराब हो जाए, है ना, जैसे मैं प्रवचन दे देते थे एक बजा दूं तो कितने लोग भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो अगर ऐसे स्मरण नहीं हो रहा तो सोचे जब कफ पित्त वृक्ष से अवरुद्ध हमारा कंठ होगा, ऐसी स्थिति में क्या हम कृष्ण स्मरण कर पाएंगे, कृष्ण नाम पुकार पाएंगे। तो उसके लिए शिवजी ये कहते हैं, गारंटी लेते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा, है ना, अंत में अगर उसका गला अवरुद्ध भी हो गया तो मैं उसके कान में आकर के उसको स्मरण दिलाऊंगा कि कृष्ण ही परम भगवान है ना। तो ये तारक मंत्र कहते हैं इसको, इसीलिए आप देखेंगे हर शमशान घाटों में एक ही व्यक्ति की मूर्ति होती है, किसकी, शिवजी की। क्योंकि शिवजी का कर्तव्य है, वो डिवाइड करते हैं कौन व्यक्ति भक्त है और कौन अभक्त है, इसने पूरा जीवन भगवान का जप किया या नहीं किया, और उसी प्रकार से फिर यात्रा उसकी प्रारंभ होती है। तो ये शिवजी जो है महान वैष्णव है, मैं पढ़ रहा था विश्वनाथ भगवान के बारे में, काशी नगरी उत्तर काशी के लिए कहते हैं, अपि कामोतरो जंतुरे काम रक्षति मातरम, अपि पाप कृत काशी रक्षा मोक्षार्थिनेकिका। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कामी है, जिसकी इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई है, जो व्यक्ति पापी है, जिसकी अभी पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है, ऐसा व्यक्ति काशी में नहीं आना चाहिए, है ना। भगवान शिव उसके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, हम देखते हैं केदारनाथ में बाढ़ आई और कई लोग उसमें बह गए, ऐसा नहीं सभी लोग बह गए, उसमें से कुछ लोग बह गए, क्योंकि यहाँ पर काशी के बारे में बताया गया, इस धाम के बारे में, कि जो कामोत्तर है, कामोत्तर जिनके अंदर लस्टी डिजायर्स हैं, जंतुर एकाम रक्षति मातरम, और जिनका आजीवन का कर्तव्य बस ये खाओ पियो और मौज करो, है ना, खाना पीना सोना बस मजे करना, है ना। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का तो सभी तो मजा ले रहे हैं सभी, है ना। तो ऐसे भी ऐसे जो लोग हैं, अभी पाप कृत है काशी, अगर वो ऐसे पाप कृत कहते हुए काशी में आते हैं, उनको क्या कहा गया, रक्षा मोक्ष अर्थी नेकिका, उसको मोक्ष प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चलिए लिबरेशन प्राप्त भी हो गया, मुक्ति प्राप्त भी हुई कि उत्तर काशी आया या काशी आया, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं किया है तो उसका जो जीवन के अंतिम समय का सफर है बहुत खतरनाक होता है ना। तो हम सफर के बारे में भी चर्चा करेंगे, माता जी ने कहा था तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ज्यादा समय है नहीं हमारे पास। तो पहले हमें समझना चाहिए कि भगवान शिव को किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा शिव जी के बारे में बताता हूँ कि ये स्थान, आप पूरे स्थान में, इस चार धाम में आपको कृष्ण भक्त नहीं मिलेंगे, सारे कौन मिलेंगे, शिव भक्त मिलेंगे, नीलकंठ महादेव, अनशिव गुफा, विश्वनाथ, इसी तरह से आप ऊपर चलते जाएंगे तो सारे धाम में, या शिव जी का सारा एरिया है ना, पहाड़ है, पहाड़ वाले शिव जी है ना, पहाड़ वाली माता उनकी पत्नी पार्वती और पहाड़ वाले देव भगवान शिव, तो ऐसे शिव यहाँ रहते हैं। तो हमें सुनना चाहिए कि शिव का प्राकट्य कैसे होता है। तो श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के 12वें अध्याय में वर्णन है कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ। तो भागवत में आता है, दिह निग्रह मानो अपि ब्रह्म मध्याते प्रजायते संध्या जात तन्मयो कुमारो नील लोहितः। तो बताते हैं नील लोहितः, नीले रंग के एक भगवान प्रकट हुए, कहां से, दिया निग्रमाणो अपि ब्रह्म मध्यात प्रजायते, ब्रह्मा जी के जो ये मध्य भाव है ना, इसको क्या बोलते हैं, आईब्रोज, तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द आईब्रोज, ब्रगो, ब्रगो बोलते हैं ना ये, ब्रगटी, ब्रगो, ब्रगो मध्यायते प्रजायते, तो ब्रह्मा जी के मस्तक से प्रकट हुए। अभी कई लोग तो इसी कंफ्यूजन में है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा नहीं कि तीनों एकाक ट्रिनिटी एक साथ आई है, इसमें गैप है। सबसे पहले कृष्ण ने विष्णु को प्रकट किया, विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी को जब सृष्टि रचने के लिए प्रजायते, प्रजनन करने के लिए उनको सेवा दी गई, तो उन्होंने सबसे पहले नारद मुनि को प्रकट किया। नारद मुनि बोले मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा, गृहस्थ जीवन बड़ा डिफिकल्ट है ना, उसमें जॉब करनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ते हैं, बच्चों का देखभाल करना पड़ता है, भजन करने का टाइम नहीं है। तो मैं नारद जो हूँ क्या करूंगा, कथा प्रचार करूंगा, शादी विवाह में नहीं फंसूंगा, प्रचार करूंगा सिर्फ। फिर उन्होंने चार कुमार मानस पुत्र, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी ब्रह्मचारी रहेंगे। तो वो बड़े ही दुखी होकर के दिया निग्रहाणो अपी, दुखी में वो क्या सोच रहे थे, भ्रगो मध्याय थे प्रजाए थे। अचानक ही रोते रोते चिंतन करते करते उनकी भ्रगुटी के बीच से, मस्तक के बीच भाग से क्या हुआ, सधो अज्जाय थे तन्मय, उनका तन्मय होता है ना बच्चा, तना तनो सुत तन ऐसे बोलते हैं ना, तो उनके यहाँ से कौन प्रकट हुए, कुमार हो एक कुमार प्रकट हुए जो थे नील लोहिता, नीले रंग के प्रकट हुए, वो कौन थे, शिव। और जब वो रोदन करने लगे, भी छोटा बच्चा क्या करता है, रोता है, और ब्रह्मा जी भी रो रहे थे कि पता नहीं ये भी सृष्टि की रचना में आगे हाथ बटाएगा कि नहीं बटाएगा। विष्णु भगवान ने, कृष्ण ने मुझे सेवा सौंपी है कि प्रजाति बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ लोगों की, लेकिन यहाँ तो कोई ग्रस्त जीवन में प्रवेश ही नहीं करना चाहता। तो ये ग्रस्त जीवन में प्रवेश इसलिए नहीं करना चाहते भौतिक संसार के लोग, क्योंकि वो सोचते हैं कि इंजॉयमेंट करना है ना, तो उसमें विवाह के बंधन में क्यों फंसना। लेकिन ग्रस्त व्यक्ति के लिए एक जो ग्रस्त आश्रम है, दो प्रकार के लोग होते हैं ना, एक ग्रह मेधी, एक ग्रस्त आश्रम। ग्रह मेधी कौन है, कौन है ग्रह मेधी, जो जो इंद्र तृप्ति में लगा हो, जिसके जीवन का एक ही कर्तव्य हो कि कमाओ और भोग करो, है ना, और भोगने के भोगने भोगते भोगते जब वो थक जाता है तो फिर क्या करता है, त्याग। त्याग करने के बाद में अकेला रहता है, और चार धाम की पहाड़ी में कई सारे ऐसे मिलेंगे आपको बैठे हुए ना ऊपर, त्याग करके आ गए हैं। और फिर जब यहाँ त्याग करके 15-20 साल ठंड बहुत लगती है, कपड़े वगैरह नहीं होते, तो फिर वो भक्ति तो होती नहीं है, फिर नीचे उतर जाते हैं भोग करने के लिए। तो उनका पेंडुलम ऐसे ही घूमता है, भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग ऐसे चलता है, लेकिन भक्ति कभी नहीं होती है। तो वो ग्रह मेधी लोग हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी से दुखी होकर के, वैसे सभी दुखी रहते हैं लेकिन वो स्पेशल था, वो दुखी होकर के और हिमालय पर्वत के पास में बद्रीनाथ आश्रम पहुंचे। आप भी जाएंगे वहां पर तो आप दुखी नहीं, आप तो खुश होके जाइएगा। तो माता जी लोग देखिएगा, पता है कोई प्रभु दुखी हो तो वहां बैठ ना जाए। तो वहां पर देखा कि वहां पर 7 ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे थे। तो 7 ऋषि बैठे थे, उसमें सबसे एक सीनियर थे, फिर एक थोड़े जूनियर, फिर जूनियर जूनियर, ऐसे परंपरागत शिष्य बैठे थे गुरु परंपरा में, सभी भजन कर रहे थे। तो उन्होंने जाकर के जो सबसे सीनियर थे उनके पास प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं इतनी दूर आया हूँ त्याग करके परिवार को, बड़ा परेशान हूँ, कोई सॉल्यूशन बताइए। हाँ क्या सॉल्यूशन चाहते हो? कहा मेरा और मेरी पत्नी का बनता नहीं है। हाँ तो उन्होंने कहा जो सबसे आखिरी में बैठे थे, रामदास एक और चटाई डाल दो, है ना। तो सातों के सातों वो ऋषि त्यागी नहीं थे, वो है वो सारे के सारे परेशान आत्मा थे। भागवत गीता कहती है ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, वो थे ब्रह्म भूत परेशान आत्मा। तो ऐसे परेशान आत्मा आकर के बद्रीनाथ आश्रम में बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन सही मायने में ग्रस्त आश्रम वो है, आश्रम का मतलब जहां पर कथा कीर्तन सुनाई दे, है ना। आश्रम है जैसे हम यहाँ रुके हैं, तो हम यहाँ देखेंगे अधिकतर सभी जगह नीलकंठ आश्रम, भक्ति वेदांत आश्रम। आश्रम मतलब जहाँ कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे। अभी चाहे वो ब्रह्मचारी जीवन में आश्रम हो, चाहे वो ग्रस्त जीवन में आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम, आश्रम तभी लगता है जब श्रम को आराम मिलता है। श्रम मतलब मेहनत, जब मेहनत को आराम लग जाता है ना, आश्रम आराम, श्रम को बहुत मेहनत नहीं करना, बस 8 घंटे कमाया उसके बाद का समय कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो ग्रस्त आश्रम है ना। और ऐसे ग्रस्त आश्रम में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को भी क्या बनाएं, कृष्ण भावना भवन बनाएं। तो ज्यादातर लोग सिर्फ अपने को सोचते हैं हम भक्त बन जाएंगे, लेकिन एक भक्त के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करे, प्रचार करे। और चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने घर को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए, ना हो उनके नसीब में लेकिन हमारे पास में क्या है, हम प्रयास कर सकते हैं ना। कहते हैं गुरु न शिष्यात् जननी न शिष्यात् पितृ न शिष्यात् मातृ न शिष्यात्। भागवत कहती है कि वो व्यक्ति माँ माँ बनने योग्य नहीं है, वो पिता पिता बनने योग्य नहीं है, वो गुरु गुरु बनने योग्य नहीं है, जो अपने ऊपर डिपेंडेंट्स को क्या नहीं बनाते, कृष्ण कॉन्शियस नहीं बनाते। लेकिन उनको बनाने से पहले खुद बनना पड़ेगा, है ना। खुद पिताजी सिगरेट पीते हो और बच्चे को बोले बेटा सुनाओ भगवद गीता का प्रथम श्लोक, है तो बोलेगा कि पिताजी मैं तो सिगरेट पीऊंगा, मैं क्या, मैं तो आपको कॉपी, आप मेरे आइडियल हैं, आप, मैं आपको सोच, यू आर माय मॉडल, सो फादर आई जस्ट वांट टू फॉलो यू। लेकिन हम चाहें कि वो भक्त बन जाए तो बहुत मुश्किल है। तो खाली सिगरेट ही नहीं, ऐसे कई सारी चीजें हैं। जैसे एक पिताजी अपने बच्चे पर क्रोध कर रहे थे, कहते हैं कि तुमने कल का लेसन याद किया कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो बच्चा बोला कि नहीं पापा याद नहीं किया। कहा कि याद नहीं किया, तुम्हें बोला था एक सेंटेंस याद नहीं कर सकते, कैसे बेवकूफ हो। बोलो क्रोध नहीं करना चाहिए, इसमें क्या मुश्किल है। कहा पिताजी नहीं याद हो रहा। बोलो बोलो क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं याद हो रहा। मैंने तुमको बोला था तुम्हें समझ में नहीं आता क्रोध नहीं करना चाहिए, इतना सा याद नहीं कर सकते क्रोध नहीं करना चाहिए। बोला पिताजी मैं याद तो कर लिया लेकिन समझ नहीं पा रहा था, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपने भी उसे अप्लाई नहीं किया तो मेरे को भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए बोलने से पहले अपनाना चाहिए, है ना। तो गीता हम प्रचार करने जाएं उससे पहले हमको कुछ कोशिश करनी चाहिए, हम अपने जीवन प्रचार तो करें साथ साथ में अपना अपनाने की भी कोशिश करें, है ना। जैसे आप देखिए वृंदावन में एक राक्षसनी आई थी जिसका नाम था पूतना। वो क्या रूप में आई थी? लेडी, लेडी तो थी, सुंदर स्त्री के रूप में उसने अपना रूप को परिवर्तित किया और सुंदर स्त्री बनकर आई। लेकिन उसका थॉट प्रोसेस क्या था, उसके माइंड में क्या था? कृष्ण को मारना चाहती थी। इस भौतिक संसार के लोग भी क्या करना चाहते हैं, कृष्ण को मारना चाहते, कहते हैं कृष्ण नाम की कोई चीज नहीं। अरे वो तो इंसान थे, बड़ा ही बुरा हुआ उसके साथ में ना, कृष्ण के साथ में बेचारा बचपन में ही ना उसको जेल में पैदा होना पड़ा, बाद में बेचारे को उठाकर ना मस्तक पे रख करके पानी में ठंड में बारिश में ना दूसरे घर जाना पड़ा, पूरा जीवन माँ बाप से बिछड़ के रहना पड़ा, है ना। बाद में इतने सारे राक्षसों का प्रहार सहना पड़ा, फिर बाद में 11 वर्ष की उम्र में छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, वहां से भी उसको है ना भागना पड़ा, भाग करके रणछोड़ नाम भी लेना पड़ा, इतना दुखी व्यक्ति। फिर बाद में महाभारत ने भी उसको है ना बेचारे को अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाने दिए, बाद में ना उसको ना राधा रानी से इतना प्यार था ना उसको मिलने भी नहीं दिया, बाद में ना 125 वर्ष की उम्र तक बेचारा दुख में रोता रहा, एंड में ना पैर में तीर लगा और मर गया बेचारा, बहुत दुखी स्टोरी है ना। एक माता जी हमारे मंदिर में आई थी द्वारका में, बहुत रो रही थी। तो पूछा इतना क्यों रोती है माता जी, तो बोली मेरे को इतने दुखी व्यक्ति को देखकर बहुत दुख आता है। तो भगवान को ऐसे लिखते हैं ना, भगवान कहते हैं ना गीता में मूढ़ां नाभि जानाति, मूर्ख लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे, है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्त्वतः, त्यक्तं देहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सुअर्जुनः। हे अर्जुन, जो मेरे इस जन्म कर्म की लीला को समझता है कैसे तत्व के रूप में, वो व्यक्ति सही मायने में अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम आएगा। जय श्री कृष्ण गुजरात में लोग बोलते हैं, लेकिन किस लिए बोलते हैं? धंधा धंधा बढ़ना चाहिए ना बाबा, धंधा जय श्री कृष्ण बोलते हैं। कितने लोग मानते हैं सच में कि कृष्ण ही पर भगवान है, या फिर हमें भक्ति प्रेम के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, मानते नहीं। आप देखिए भक्ति की शुरुआत होती है दक्षिण भारत से, फिर धीरे धीरे जब वो महाराष्ट्र पहुंचती है तो जीर्णहीन अवस्था में आती है, जब वो गुजरात पहुंचती है तो उसके साथ में और दुर्व्यवहार होता है, सिर्फ पैसे के लिए उसे याद करते हैं, और इस तरह से जब वो वृंदावन पहुंचती है तो वृंदावन जाकर वो दोबारा से अपनी वृद्ध अवस्था से एक नवन व्यवस्था में आ जाती है। लेकिन उनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो अभी भी जीर्ण रहते हैं। तो जीवन में ज्ञान और वैराग्य वृंदावन जाने से भी नहीं आता, भक्ति तो फिर भी आ जाती है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं आता। तो ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? नारद मुनि ने देखा कि जीर्ण अवस्था में भक्ति माता पड़ी हुई है और उनसे पूछा कि माता क्या हुआ, क्यों ऐसे रो रही है? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो युवा हो गई हूँ वृंदावन आकर, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी कैसे हैं, वृद्ध हैं। कहा इनके लिए कोई तरीका बताइए। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा आप इनके लिए बताइए क्या करें, क्या जैसे ये वापिस अपनी युवा अवस्था को पाए, कैसी स्थिति है, माँ से ज्यादा बच्चे बूढ़े। तो उन्होंने फिर कहा कि आप इनको क्या करिए, चतुर कुमारों से भागवत सुनाइए। तो वो कहाँ बैठे थे? बद्रीनाथ आश्रम, जहां आप जाएंगे कुमार गुफा देखेंगे। तो बद्रीनाथ आश्रम में गए नारद मुनि और कहा कि आप मेरे पिताजी के पुत्र हैं और मेरे बड़े भाई हैं, तो आप क्या करिए कथा सुनाइए और कथा सुनाकर ज्ञान वैराग्य को वापस युवा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो भाई हम यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तपस्या के कारण हमने शादी नहीं करी, तपस्या के कारण अपने शरीर को 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, और अब तुम कह रहे हो कि हम इस स्थान को छोड़कर जाए, नहीं हम ये छोड़कर नहीं जाएंगे। कहा फिर क्या करें? कहा आप उन लोगों को ले आओ जिनको कथा सुननी है ना, कुआं प्यासे के पास आते हम नहीं जाएंगे। तो नारद मुनि असमंजस में बोले भक्ति माता को मैंने वरदान दिया था, ये अभी ये बोला था, वायदा किया था, आई विल फुलफिल योर डिजायर, मैं लेके आऊंगा आपके बच्चों को युवा करूंगा, लेकिन यहाँ तो परिस्थिति गंभीर है, ये चल नहीं सकते वो आ नहीं सकते। फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज किया गया और कहा कि हरिद्वार स्थान में कथा करी जाएगी, और हरिद्वार में चतुर कुमारों ने आकर के भागवत कथा किया। उन्होंने कहा कि ये हरि का द्वार है, इस द्वार से हरि के घर जाया जाता है बद्रीनाथ आश्रम। तो ये हरि के द्वार तक हम जाएंगे, द्वार के बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर में रहेंगे। द्वार के बाहर निकले तो हम एक्सटर्नल हो जाए ना, आउटसाइडर, हम इनसाइडर बन के रहेंगे, अंदर रहेंगे। तो ज्ञान वैराग्य को लेके आए और जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई चतुर कुमारों के द्वारा, तो कथा में जैसे ही क्या आया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत ज्ञान और वैराग्य उठ करके युवा बनकर नृत्य करने लग गए, है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, तो ये ग्रस्त आश्रम का कर्तव्य है। तो जब वृंदावन में पूतना ने प्रवेश किया, जैसे भौतिक संसार के लोग भी अपने घर में एक पूतना को रखते हैं, क्या नाम है उस पूतना का, हमारे घर में भी एक पूतना रहती है ना, वो पत्नी मत बोलो, वो पत्नी बोल रहे हैं, नहीं ये नहीं बोल रहे, मैंने ये नहीं कहा ये बोल रहे हैं, मैंने कहा कोई बोल रहा है, मैंने बचा लिया आपको। हाँ तो कौन रहता है हमारे घर में पूतना रूप में, पूतना का एक और नाम है संस्कृत नाम, क्या नाम है संस्कृत नाम क्या है पूतना का, खेचरी, खेचरी है ना। खेचरी का मतलब होता है, खेचरी मतलब जो वायु के द्वारा विचरण करती है और देखती है कहाँ कहाँ लोग कृष्ण भजन करते, तो उनको खाना है मेरा काम, खेचरी जो हवा के माध्यम से आती है। तो हमारे घर में भी एक पूतना है जिसका नाम है टेलीविजन, उसके अंदर जितना भी कार्यक्रम आता है वो किसके द्वारा आता है, माया, एयर माया मीडियम है, एयर माया मीडियम से एक खेचरी आती है और घर में प्रवेश करती है, और आने के बाद में बच्चों को क्या सिखाती है, कृष्ण नाम की कोई वस्तु है ना। आप बोलेंगे अरे पापा आपको मालूम नहीं, आप तो है ना अंधविश्वासी हो, तो अगर पिताजी अंधविश्वासी होंगे तो बच्चे तो कभी समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों को भी क्या बनना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए पहले माँ बाप को लॉजिकल कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, है ना, जब वो प्रश्न पूछे उसका सही जवाब देना आना चाहिए, तो फिर बच्चे भी कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं। तो ये बच्चों का और माँ बाप का दोनों का ये क्या कहते हैं, कलेक्टिव एफर्ट है, ऐसे नहीं कि पिता माता का ही कर्तव्य और बच्चों का कुछ नहीं। तो बच्चों को भी, वो बच्चे सही मायने में अच्छे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए सेवा करते हैं। तो तीन प्रकार के पुत्र बताए गए ना बच्चे, एक होते हैं बेटा, एक होता है लड़का और एक होता है पुत्र। बेटा कैसा होता है, जो कि माँ बाप के वृद्ध हो जाने पे अपनी बहन और अपने भाइयों से युद्ध करता है, बंटवारा करो है, पिताजी का पैसा मुझको दो, वो होते हैं बेटा। इसलिए कभी नहीं बोलना चाहिए ये मेरा बेटा है, अभी बाद में फिर बंटवारा करेगा। एक होता है लड़का, जिसको बंटवारा नहीं मिलता तो फिर वो लड़ाई करता है, लड़ लड़के अपना ले लेता है, वो कहते हैं ये हमारा लड़का, ये लड़के ले लेगा। लेकिन पुत्र होता है पू नामक नरक से ताड़ने वाला जो होता है ना, पू नामक नरक त्रायते इति पुत्र, पुत्र वो है जो पू नामक नरक से ताड़ दे। जो 28 प्रकार की नरकों का वर्णन भागवतम के 5वें स्कंद में हुआ है उसमें पू नामक नरक है, उस नरक से वही तार सकता है जिसका बेटा क्या हो, कृष्ण भावना भवित भक्त हो। अभी आपको बताएंगे कि जब माता पिता अगर बच्चों को भक्त नहीं बनाते तो उनके साथ में क्या दुर्व्यवहार होता है। तो पहले अभी हम चर्चा कर रहे थे शिवजी के बारे में, फिर पुनः उस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। शिवजी जो है वो भगवान कृष्ण के परम भक्त है, ऐसा आप पढ़ेंगे शिव स्तुति संवाद है 4वें स्कंद भागवतम में, उसमें वो एक तपस्या करते हैं और क्या कहते हैं, भगवान की प्रार्थना शिवजी कर रहे हैं, तो शिवजी के इस धाम में उत्तरकाशी में बैठकर प्रार्थना सुननी चाहिए। वो कहते हैं, त्वम एक आघम पुरुषा सुप्ता शतीर त्याया रजा सत्व तमो विधाते महानहम रवम मारुताग्निवाधरा सुरारिष्य भूत गणायतम अथ। तुम एक आद्य, आप ही मेरे एक आराध्य हैं, तुम ही हो बस जीवन में, शिवजी कह रहे हैं बस आप ही हो भगवान मेरा सेंटर ऑफ फोकस, कहीं और लेफ्ट राइट नहीं होता है, मेरा फोकस बस कौन है, कृष्णा, ऐसा बोल रहे हैं शिवजी। तो फिर बाद में नारद मुनि इस बारे में वर्णन करते हैं कि शिवजी ने क्या कहा कि भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो कहते हैं पूज्योध्वम, मैं कैसे पूजा करता हूँ भगवान की, पूज्योध्वम पहले उनकी अर्चना वंदना करता हूँ, फिर ग्रणतश्चः फिर मैं उनके नाम का कीर्तन करता हूँ, फिर ध्यानश्चः फिर मैं उनका स्मरण करता हूँ, और उसके बाद में कैसे करता हूँ असकृतः हरिम, ऑलवेज रिमेम्बरिंग ऑलवेज कीर्तनम सदाहरि असकृतम हरिम। बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं है, हर वक्त जब भी मुंह से निकले तो क्या निकले, हरे कृष्णा। लेकिन हम लोगों के मुंह से क्या निकलता है, हेलो। कितने लोग हेलो बोलते हैं फोन उठाकर, कोई नहीं बोलता। सच सच बोली ना, इतने सारे लोग हेलो बोलते हैं। हेलो का मतलब जानते क्या होता है, हेल का मतलब जानते क्या होता है, हाँ हेल का मतलब नरक, और बोले हेल लो नरक लो। तो पहले ही व्यक्ति इतना दुखी है, नरकों में पड़ा दुखी भोग रहा है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ऊपर सुबह सुबह हेलो जी हेलो नरक ले लो, हम भी हैं तुम भी आ जाओ। और अभी बच्चों को एडवांस बनाने के लिए इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाते हैं, और हेलो का एडवांस वर्जन आ गया अभी, क्या आए आए हो। तो हाय पहले शास्त्रों के अनुसार कैसे बोला जाता था, हाय जब किसी चीज का लॉस होता था ना, कमी हो जाती, हाय हाय। हाँ, या फिर कोई मृत शरीर होता था घर में, शांत होता था तो क्या बोलते थे, हाय हाय। या फिर भगवान पुरुष और स्त्री के बीच में किसी व्यक्ति को उत्पन्न करता था तो बोलता था हाय हाय। लेकिन आज तो सभी सुबह सुबह उठकर एक दूसरे को क्या बोलते हैं, हेलो हाय
या गुड मॉर्निंग।
तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें इस्कॉन के भक्तों को क्या बोलना चाहिए, हेलो हाय छोड़िए, बोलो हेलो
हाय,
हेलो हाय छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए,
हरे कृष्णा बोलिए,
हेलो हाय छोड़िए,
हरे
कृष्णा बोलिए,
हरे कृष्णा बोलिए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। तो इस तरह से सभी बच्चों को क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा। कभी फोन आए ट्रिंग ट्रिंग तो उठा के क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा। हाँ देखा, बड़ों को भी, पर बड़े बोलेंगे तो बच्चे अपने आप बोलेंगे, एग्जैक्टली करेक्ट परफेक्ट है ना। तो इस तरह से एक शास्त्र जिसका नाम है प्रेम विवत्त पुराण, तो प्रेम विवत्त पुराण में वर्णन है, शिव जी कहते हैं किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो कहते हैं श्री कृष्ण वैष्णवंतो प्रेम भक्ति विवर्तते, कृष्ण भक्ति रसा सारा वलसी रुद्र अनुकंपया। रुद्र की अनुकंपा होगी तो आपके जीवन में कृष्ण प्रकट होंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि जिस भी धाम में आप प्रवेश करेंगे, हर धाम में कृष्ण की रक्षा करने के लिए क्षेत्रपाल होते हैं, कौन, शिव जी। क्यों शिव जी इतने महान भक्त बन जाते हैं, कहते हैं निम्न गणाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथाम शंभु पुराणानाम इदं कथा। कहते हैं पुराणों में भागवत पुराण नदियों में आपके सामने बह रही हैं, गंगा जी, देवों में वैष्णवों में कौन है, अच्युत भगवान, और वैष्णवों में परम है कौन, भगवान शिव। तो इस तरह से भागवत वर्णन करती है, तो ये भगवान शिव की ग्लोरीज। वो कहते हैं श्री कृष्ण वैष्णवांतु, अगर आप कृष्ण प्रेम चाहते हैं, प्रेम भक्ति विवर्धते, और कोई व्यक्ति प्रेम चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति रस सारा वलसी रुद्र अनुकंपाया, उसको रुद्र की अनुकंपा प्राप्त करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम रुद्र की पूजा करें, उनका ओम नमः शिवाय जाप करें, इसका मतलब है कि हमें रुद्र को शिव को वैष्णव के अनुसार देखना चाहिए, और शिव को वैष्णव के अनुसार देखने से कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते इस व्यक्ति से जो सभी वैष्णवों के साथ सम्मान का व्यवहार करता है, और स्पेशली शिव जी के साथ में। तो वैसे शिव जी आप पाएंगे हर जगह, क्यों इतने महान बन जाते हैं, जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन में से सबसे पहले क्या निकलता है, विष, और उसको पीने के लिए किसको पुकारा जाता है, शिव जी को। तो जब शिव जी को बुलाया गया तो शिव जी तो मानते हैं अथॉरिटी को फॉलो करना, कहा कृष्ण आपने कहा है मैं फॉलो करूंगा, लेकिन उनकी पत्नी पार्वती बोली कि आप तो पी लेंगे हला हल, लेकिन मेरा क्या होगा, आप तो गुजर जाएंगे शरीर छोड़ देंगे, मेरा क्या होगा, है ना। इसलिए कई बार पत्नी प्रभु को सेवा में लगने भी नहीं देती है ना। तो ये पत्नी का कर्तव्य है कि वो प्रभु को सेवा में लगाए, बोले नहीं नहीं जो भी बोला गया गुरुदेव के द्वारा आपको करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से शिवजी जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन आप सोचिए जिस व्यक्ति ने भगवान की बहुत अधिक नाम जप किया हो और उसके जीवन में भगवान उसको गिफ्ट में जहर दे दे, ऐसे व्यक्ति भगवान का भजन करेगा। हमें कोई बोले हम पूरा टाइम हरे कृष्णा चैंट कर रहे हैं और एंड में आकर के सेवा जब देने का टाइम आया तो कहा प्रभु आप ना बोलते तो अच्छा हो, प्रचार तो अच्छा करते हो, लेकिन इस बार जन्माष्टमी में आप जूता पॉलिश करेंगे, हाँ हाँ जूता की सेवा आपकी जूते के काउंटर पर रहेंगे, तो कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे। या किसी दिन सुबह सुबह आप आए और बोले अरे प्रभु ये ना महाप्रसाद किचन डीटी रूम में ना ये चूहों को मारने की गोली पड़ी थी, अब ये तो प्रसाद बन गया प्रभु, कहाँ फेंकेंगे इसको, आप ग्रहण कर लो ना। हाँ तो फिर कौन ग्रहण करने को तैयार होगा। लेकिन शिवजी तैयार होते हैं क्योंकि वो जानते हैं रक्षति ते कृष्णा ना रक्षति ते कृष्णा, कृष्ण रक्षा करने वाले हैं। तो शिवजी ने जब अरहर पीने के लिए प्रारंभ किया तो पार्वती बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, तो उनको भगवान कृष्ण ने कहा मैं परमात्मा रूप में हृदय में विराजमान होता हूँ, है ना, तुम चिंता मत करो पार्वती, मैं जब ये अपना हलाहल जय पियेंगे तो मैं इनके कंठ में हाथ लगा करके रोक दूंगा, नीचे उतरने नहीं दूंगा, इसलिए जब फूड पाइप में नीचे नहीं आएगा तो इनका कुछ भी नाश नहीं होगा। और उन्होंने अपने गले में जब उसको रखा, भगवान कृष्ण ने उसमें हाथ लगाया तो उनका कंठ कैसा हो गया, नीला, और इसी तरह से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव की जय। तो इस तरह से ऐसे जो अब भगवान है उनसे सीखना चाहिए कि हमें भी वैष्णव बनने का मौका मिले, हर परिस्थिति में कृष्ण भजन कर सके, है ना। अगर हम कृष्ण भजन करना हर परिस्थिति में नहीं सीखेंगे, अपने बच्चों को हम भक्ति मार्ग में नहीं लाएंगे, तो क्या होता है जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है और वो भौतिक संसार का व्यक्ति है, उसने कृष्ण भावना भवित को बड़े हल्के में ले लिया, अरे ठीक है भक्ति करते हैं सब करते हैं, अभी इट्स नॉट टाइम टू बी 100% कृष्ण भजन, टाइम आएगा तब करेंगे, ऐसा जो सोचता है वो व्यक्ति अगर अपना शरीर छोड़ दे तो उसकी आत्मा के साथ में उसको बहुत ही लंबे समय से गुजरना पड़ता है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो उसके 10 दिन तक आत्मा वहीं रहती है, 10 दिन तक, लोग तो चौथे दिन में चौथा कर देते हैं ना, हम चौका मार देते हैं जल्दी, लेकिन 4 दिन नहीं 10 दिन तक आत्मा उसी शरीर के वहीं जिस स्थान में वहां रहा वहीं रहती है। और 13वां दिन 13th day जब 13वीं की जाती है उसके बाद में उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम या हिंदू या सिख या ईसाई, हर एक की आत्मा के साथ में वही रूल इज फॉर इक्वल फॉर ऑल, रेड लाइट ये नहीं बोलती आप मुस्लिम हैं आप हिंदू हैं आप क्रिश्चियन हैं तो मैं होंगी आपके लिए ज्यादा होंगे आपके लिए कम होंगे। तो कई लोग बोलते हैं हमारे कुरान में ऐसा नहीं लिखा, हमारे सिख उसमें नहीं ऐसा लिखा, ये क्यों ऐसा लिखा है। जो कोई भी कितने भी ज्यादा इस चीज को डिफेंड करने की कोशिश करे बट फैक्ट रिमेन्स अ फैक्ट। और उस व्यक्ति की आत्मा को 13वें दिन यमदूत जब ले जाते हैं तो उसकी यात्रा 1 वर्ष की होती है, ऐसा नहीं कि अभी शरीर छोड़ा और तुरंत ही उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो गया। हम सोचते हैं ऐसा लिखा गया है कि ऐसे बस किया और जैसे ही छोड़ा उसके बाद अगला नेक्स्ट डे शुरू हो गया, इस यात्रा को प्रारंभ करके पूरा 1 वर्ष लगता है एंड होने में। इसके अंदर जजमेंट भी डे आता है, एक दिन निर्णय दिवस होता है जहां पर यमराज के यहाँ पर निर्णय लिया जाता है इस आत्मा ने कैसे काम किए। आपके यहाँ पर भगवान ने एक CCTV कैमरा लगाया है, है ना, उसमें वो सब नोटिफाई करते हैं, MIS शीट बनती है कि इसके क्या क्या एक्शन थे, क्या सोचता था, क्या बोलता था, अकेला होता था तो इसका मन कितना भ्रमित था, एवरीथिंग डिटेल इज देयर। तो उनके एक सेक्रेटरी चित्रगुप्त, वो तुरंत जैसे आत्मा पहुंचती है सूक्ष्म शरीर यातना शरीर में डाल के उसके शरीर से चिप निकाल कर लैपटॉप में डालते हैं, खोलते हैं उसका डेटा तुरंत आता है नीचे और फाइनल नीचे लिस्ट आती है क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, है ना, कहते हैं इसका पाप का घड़ा कितना, पुण्य का घड़ा कितना, भक्ति का घड़ा कितना। अरे भक्ति तो कभी करी नहीं, थोड़ा बहुत के उसमें इतना अपराध किया, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, जीरो बैलेंस, माइनस में चल रहा है इसका। और पुण्य किया, पुण्य तो किया इसलिए चक्कर में नहीं कि भक्ति कर रहा था, और बोले पाप, बोले अरे पाप ही तो पाप किए इसने, ठीक है भेजो इसको नरक में। तो फिर उस यातना शरीर से उसको नरकों में जाना पड़ता है। और जो यात्रा भी प्रारंभ होती है, ये स्टार्ट होती है, तो इसमें आप बताया गया है कि कितनी दूरी है इसकी, तो ये कोई मैं मानसिक धारणा से नहीं बोल रहे हैं, ये गरुड़ पुराण में उसका वर्णन है। 86,000 योजन पृथ्वी से लेकर यात्रा करनी पड़ती है यम लोक तक की, 86,000 योजन। एक योजन में 7.5 माइल होते हैं ना, 7.5 मील्स, 7.5 मील इंटू 86,000 योजन मतलब कितना हो गया, 10,00,000 किलोमीटर, 10,32,000 किलोमीटर। अगर यहाँ भी हमें कोई बोले 22 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलना है, तो 5 किलोमीटर चलने में हमें घोड़ा चाहिए होता है, नट्टू चाहिए होता है, अभी शरीर छोड़ने के बाद में 10,00,000 किलोमीटर चलना है, है? और अभी तो क्या कोई मारने वाला नहीं है, अपनी इच्छा है, फ्री विल दिया है भगवान ने, चॉइस इज योर्स। लेकिन जब एक बार शरीर छूट जाता है, उसके बाद में दो यमदूत होते हैं ना, जो लेफ्ट एंड राइट होते हैं, वो व्यक्ति धीरे धीरे चलता भी है तो पीछे से वो मारते हैं, कहते बहुत धीरे धीरे चल रहे भैया, तुम्हारा तो धीरे धीरे होगा, हमें तो बहुत सारे कष्ट पर लाने होते हैं, छोड़ने होते हैं ना। तो इस तरह से देखा होगा आपने, जैसे पिट्ठू वाले थे जो घोड़े वाले, वो मारते घोड़े को जल्दी जल्दी चलते, हम कहते भैया धीरे चलो धीरे चलो, लेकिन वो मारते घोड़े को तेज तेज चलते, वो आपकी फिक्र नहीं करते हैं आपको कितनी चोट लग रही है, आपके आगे पीछे क्या हाल हो रहा है, वो लेके बस चलते रहते हैं। ऐसे ही वो भी मारते हैं, और मारने के साथ साथ में वो आत्मा 22 दिनों में जाकर के एक स्टेशन पर रुकती है, तो ऐसे 16 स्टेशन पर वो आत्मा को रुकना पड़ता है, 16 स्थान बताए गए। पहला स्थान है यमपुर, फिर समयपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, शैलग्रामपुर, क्रोंचपुर, क्रूरपुर, विचित्रपुर, ब्रह्मादपुर, दुखपुर, नानकपुर, उसके बाद सुप्तपुर, रुद्रपुर, पर्यावर्षपुर, और साथ में शीत ढायपुर। जैसे यहाँ शीत पड़ रही है ना, ऐसी शीत पड़ती है आदमी कांपता है, उसको ओढ़ने के लिए कंबल मफलर जैकेट नहीं मिलता, शीत ढायपुर ऐसा। और फिर बाद में बहु भीतिपुर, डरावनापुर पड़ता है, शैलग्रामपुर में पत्थरों की बारिश होती है, है ना। यमपुर और समयपुर में इतनी धूप पड़ती है, सूर्य का प्रकाश होता है, आदमी तपता है, जलता है ना। गल्फ कंट्री में तो 45 डिग्री 48 डिग्री 50 डिग्री, वहां तो 500 डिग्री 1000 डिग्री टेम्परेचर है, वो जल रहा है व्यक्ति, और वो कह रहा है कि मुझे छाता दे दो, धूप बहुत है, कपड़े दे दो, जूते दे दो। कहा आपका पुत्र जो था ना, जिसे आप वीडियो गेम ला कर देते थे, कभी बैठाकर गीता पढ़ाई, कभी पुराण बताया आपने, आपका बेटा वीडियो गेम खेलता था ना, देखो आपके मरने के बाद में चौथा करके वीडियो गेम खेल रहा है इस टाइम पे, लैपटॉप में लगा हुआ है वो, और वो चैटिंग कर रहा है फेसबुक पे, है? और आपको कोई उसने दान नहीं दिया, ना जूता दान दिया, ना छाता दान दिया, ना आपके मरने के बाद में आपके लिए कोई कपड़े दान दिए, ना कभी उसने मंदिर का दान दिया, और जीते जी आपने भी किसी मंदिर निर्माण में दान नहीं दिया, आपने भी कोई भगवान की सेवा नहीं करी, आपने ही प्रचार कार्य में पुस्तक दान नहीं किया, गाय दान नहीं किया। तो इस तरह से उसको यमदूत मारते भी है। फिर उसके बाद में उनके जो पुत्र आदि है, उनका कर्तव्य है कि वो श्राद्ध करे, है ना। कई लोग बोलते हैं कि अरे हम तो भक्त बन गए, अभी श्राद्ध करने की क्या जरूरत है, तो ये अहंकार है, हम भक्त बन गए। कौन कह सकता है कि मैं भक्त हूं? कई लोग कहते हैं, यू नो प्रभु, आई एम द मोस्ट हम्बल डिवोटी, आई एम द मोस्ट फॉलन वन। ये मोस्ट शब्द जो है ना, ये फॉल्स ईगो का रिप्रेजेंटेटिव है। मोस्ट, अगर मैं मोस्ट टॉप में नहीं हूँ प्रभु, नीचे से आई एम द बेस्ट वन, पति तो में मेरा नंबर पहला है। मोसमा पतिता प्रभु ना पाई बेआरा, मोसमा पतिता प्रभु ना पाई बेआरा। तो मेरे से ज्यादा पतित कोई नहीं, कौन बोलते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये हम उसको कॉपी करते हैं, वो किस भावना से बोल रहे हैं, हम लोग भी लिख लेते हैं, योर मोस्ट हम्बल सर्वेंट है। लेकिन जब सेवा की भावना आती है, प्रभु आई एम द लीडर, प्रभु आई एम इनिशिएटेड, यू नो आई एम ब्राह्मण इनिशिएटेड प्रभु, आर यू बिहेविंग विद मी प्रभु, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे, वी हैव टू से प्रभु विद अ वेरी हम्बल एटीट्यूड, डोंट से प्रभु इन अ से लाइक आई एम सेइंग प्रभु मींस यू आर माय गॉड, परमात्मा इन साइड योर हार्ट, डोंट से प्रभु पॉलिश माय शू, either you are saying prabhu and saying in attitude that you are saying you are my servant prabhu, I am your das, no I am your prabhu, actually I am writing my das but you are my das, hai na, prabhu polish my shoe. So Prabhupada said this is not correct. If you say somebody prabhu means I am your servant, oh, I am ready to serve you. To ye bhavana jagrit ho, aise hamare bachcho mein ho, tab jaakar ke wo putra banenge, sanskar aayenge, shraddha karma karenge. चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए जाते हैं कहां पर? गया में। हमारी तरह नहीं, ऐसा गया कि लौटा ही नहीं, वो गया में जाते हैं, और गया जाकर के ईश्वरपुरी से मिलते हैं, और वहां उनको दीक्षा प्राप्त होती है, और उनका नाम चैतन्य पड़ता है, तो निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। तो ऐसे वो भी श्राद्ध करते हैं। भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ महाराज का श्राद्ध किया, तो हर एक ये श्राद्ध करेगा कौन? ज्ञान तो आप ले रहे हैं और आपके बच्चा तो वीडियो गेम में बिजी है, और आपके शरीर छोड़ने पर आप तो श्राद्ध करने आएंगे नहीं, तो किसको करना पड़ेगा? हम कौन करेगा श्राद्ध बाद में? पुत्र। तो पुत्र को सिखाया? सिखाया नहीं, तो किसकी गलती हुई? हमारी गलती हुई। तो हमें अपने पुत्र पुत्री को अपने शरीर छोड़ने से पहले तैयार कर देना चाहिए कि कम से कम अगर भक्ति के मार्ग से नहीं पहुंचे तो कम से कम इस मार्ग से, श्राद्ध आदि के मार्ग से। वरना जो ये पितृलोक है, हम सुनते हैं पितृलोक पृथ्वी से ऊपर पितृलोक है, उस पितृलोक में हर नाम नाम के एक राजा रहते हैं, उनका पक्षी वाहन है कौवा है। श्राद्ध पक्ष जब आते हैं तो वो वहां पर अयर नाम राक्षस कहते हैं, राजा कहते हैं तुम्हारे पुत्र ने कुछ भोजन ही नहीं दिया, हम तुमको क्या खिलाएं, भूखे रहो अभी है। तो ऊपर से पिता आदि जितने भी होते हैं ना, वो उसे झांक झांक कर देखते हैं नीचे, अरे बेटा कुछ तो लगा दे खाने के, बिस्किट ही खिला दे, ग्लूकोज के कम से कम कुछ तो खिला दे है। लेकिन पुत्र को पता ही नहीं कि मेरे पिताजी हैं, नहीं नहीं ये सब तो है ना फॉल्स है, ऐसा कहाँ, ऐसे सब कुछ ऐसे थोड़ी होता है, मैं यहाँ भोग लगा रहा हूँ वहां वो खा लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ मैं आपको मैसेज भेजता हूँ अपने मोबाइल से, वहां दुबई में डिलीवर हो जाता है, वो कैसे होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना। तो हर चीज जैसे शास्त्र में है उसको अगर हम स्वीकार करें तो हम जल्दी से इस मार्ग का अनुगमन कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि पुत्र आदि को हम क्या सिखाएं कि क्या मार्ग सही है। तो इसका पूरा विवरण है आप सुन सकते हैं लेक्चर में, एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया उसमें आप सुन सकते हैं, क्योंकि अगर डिटेल में बोलूंगा तो बहुत समय आपका चला जाएगा। तो उत्तम मार्ग ये कि हम भक्ति को दृढ़ता पूर्वक पकड़े। और शिव जी जो है देखिए कितनी भी विषम परिस्थितियों में वो क्या करते हैं, जहर को भी स्वीकार करते हैं। और जो शिव जी हैं वो ऐसे धाम के क्षेत्रपाल बनकर रहते हैं। और एक बार जब वो भगवान कृष्ण के साथ में रास नृत्य में भाग लेना चाहते थे तो उनको गोपियों ने रोक दिया, कहा शिव जी आपकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें, इतने बड़े बड़े बाल, आपके शरीर पे इतना सारा राख है, आपके लिए अलाउड नहीं है। रास में तो वही आ सकते हैं जो कोमल होते हैं, है ना, सॉफ्ट, सॉफ्ट फ्रॉम हार्ट, सॉफ्ट फ्रॉम बॉडी, है ना। लेकिन आप तो स्टोन है एकदम ऐसे, और रहते भी शमशान में, तो आपका घर वही है, आप रास में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जब इस तरह से कहा तो शिव जी ने कहा फिर मैं क्या करूं, तो उनको फिर एक वेश दिया गया। कौन सा वेश? गोपी का वेश। और गोपी वेश देने से उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। तो जब हम इधर आ रहे थे विश्वनाथ मंदिर की तरफ, आप सुबह जा सकते हैं वॉक करते हुए, देखेंगे इधर एक गोपेश्वर महादेव मंदिर था लेफ्ट साइड में। तो गोपेश्वर महादेव मंदिर जो है वृंदावन में मुख्य है, यहाँ तो उसका एक प्रतिरूप बनाया है। तो गोपेश्वर महादेव मंदिर में आज भी वो गोपी बनकर रहते हैं। और गोपी बनकर जब भगवान ने शिव जी को साड़ी वगैरह पहना दी और गोपी रूप दे दिया तो वो गए रास नृत्य में। अभी डांस कर रहे थे भगवान तो 16108 रानियों के साथ में, गोपियों के साथ में, और नृत्य कर रहे, कभी इसके साथ हरे कृष्णा, फिर इधर हरे, देखा दूसरी आ गई, चेंज हो रही है, ऐसे चेंज होते 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 देखा एक बार हाथ पकड़ा, इतना हार्ड हाथ है, किसका है ये? तो ऐसे उठाया ऊपर से ये, ऐसे देखा, अरे शिव जी इधर क्या कर रहे हो, आपको तो कैलाश की सेवा दी थी, शमशान की सेवा दी थी, रास की सेवा में कहाँ गए? तो कहा प्रभु आपके दर्शन पाना चाहता था। नहीं आपके लिए अलाउड नहीं, आप बाहर बैठी है, और उनको बाहर बैठाया गोपेश्वर महादेव बनाकर। तो ये जो शिव जी है उनको इसीलिए कहा कि आप ये करिए कि कोई व्यक्ति मेरे गुह्यतम लीलाओं में प्रवेश तभी कर पाएगा जब वो आपको प्रसन्न कर ले। तो यू डू द ड्यूटी ऑफ अ सेवियर, प्रोटेक्टर, गार्ड का सेवा करो। इसलिए हर धाम में आप जाएंगे, अगर जगन्नाथपुरी तो वहां पर शिव जी किस रूप में विराजमान है, किस रूप में है जगन्नाथपुरी में भगवान शिव? भुवनेश्वर में जो मंदिर है लिंगराज मंदिर, जब आप जाएंगे बद्रीनाथ तो किस रूप में है? केदारनाथ के रूप में। जब आप जाएंगे वृंदावन तो किस रूप में है? गोकृष्ण। जब आप जाएंगे गोवर्धन तो किस रूप में है? वन खंडी महादेव। जब आप जाएंगे राधा कुंड और परिक्रमा चकलेश्वर महादेव, जब आप जाएंगे मथुरा तो भूतेश्वर महादेव। तो ये महादेव हर जगह मिलेंगे आपको, है ना। तो ये जो महादेव, इवन चेतन महाप्रभु के घर में आप जाएंगे मायापुर में तो उनके जन्म स्थान में भी वहां पर शिव जी महादेव है। तो महादेव हर जगह कृष्ण की सेवा में विराजमान होते हैं। तो उनको वैष्णव की तरह से उनका स्मरण करें, है ना, और सदा उनसे ये प्रार्थना करें कि जैसे वो हर सेवा को स्वीकार करते हैं, हर सेवा में ये नहीं बोलते मुझे ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। तो हमें धाम यात्रा में अपने आप को अपना क्या करें, अपना मनन करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कथा कीर्तन सुनते तो हैं लेकिन वो कंटेम्पलेशन नहीं करते। आई शुड डू कंटेम्पलेशन ऑन व्हाट आई एम। तो रात में सोने से पहले क्या करना चाहिए, एक बार सेल्फ एनालिसिस टेस्ट करना चाहिए, मैंने क्या किया, हरिद्वार का मंदिर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अगर आप चाहते हैं तो आप उसे अपने व्हाट्सएप में अपने अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम है वैष्णव अपराध अवॉइडेंस फॉर्म। उसमें 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हमने डाले हैं, और साथ में उसमें नीचे अगर वो यस और नो क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, यस नो, और डेली भरना है। डेट आती जाएगी, आपको रिमाइंडर भी आएगा आपने आज फेल किया है कि नहीं। एंड एवरी डे यू हैव टू फेल यस नो यस नो। एंड आफ्टर 8 क्वेश्चन अगर आपका वो नो 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 ज्यादा आ रहा है तो उसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए भगवदगीता के श्लोक भी हमने रिकमेंड किए हैं। तो वो आप अपने VAA फॉर्म के नाम से, वैष्णव अपराध अवॉइडेंस फॉर्म। तो हम अपराध कर रहे हैं, व्यक्ति अपराध अवॉइडेंस सोचना चाहिए उसको। VAA मतलब व्यक्ति के प्रति अपराध ना करें, किसी जीव के प्रति अपराध ना करें। तो ऐसी भावना को डेवलप करने के लिए रोज रात को सोने से पहले उस फॉर्म को भरें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो अपने आप से खुद बनाएं कि आज के दिन मैं डीमन था या डेमी गॉड था, आज के दिन मैं राक्षस था या मैं क्या था, भक्त था। तो एक और कथा सुनाकर मैं समाप्त करता हूँ। और जैसे हम उस दिन जब यात्रा कर रहे थे तो एक कथा में बता रहा था भक्तों को कि एक बार एक धोबी था, जो कि धोबी घाट पर, जैसे ये घाट है, धोने के लिए कपड़े जाता था, और वहां पर एक संत थे जो सब कुछ त्याग कर उत्तर काशी में आकर भजन कर रहे थे। और भजन करते वक्त क्या बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, खूब भजन करते थे। लेकिन भजन के प्रति मन कम होता था, भोजन के प्रति ज्यादा रहता था। आप में से कितनों का है इस समय? तो भजन के प्रति उनकी रुचि कम थी, भोजन के प्रति ज्यादा थी। उनको बिस्तर कंफर्ट नजर आते थे। हिरण्यकश्यपु के शब्द का अर्थ होता है, हिरण्य मतलब कंफर्ट, कश्यपु मतलब सोना। हाँ, तो जो व्यक्ति सोना चांदी और कंफर्ट्स के पीछे दीवाना है उसका नाम है हिरण्यकश्यपु। तो हम कौन है? और प्रहलाद का मतलब होता है जो आनंद प्रदान करता है भगवान को। तो प्रहलाद वो है जो आनंद प्रदान करता है भगवान को, उनकी सेवा, उनकी कथाओं के लिए। तो इस तरह से वो धोबी घाट पर अपने कपड़े धोने जाता था। एक दिन उसके पास में इतने ज्यादा कपड़े थे, वो 2 गधे लेकर गया। जैसे अभी कल भी हमने देखे ना, कितने सारे खच्चर गधे घोड़े घूम रहे थे वहां पर। ऐसे वो गधे को लेकर आया गंगा जी के घाट पर, देखा एक संत सब कुछ त्याग कर भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा धोबी ने उस संत से कि महाराज, आप रोज भजन करते मैं आपको देखता हूँ, आज मेरे पास 2 गधे हैं, 1 गधा तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन 1 मिस हो गया कहीं पर, तो क्या मैं इसको यहाँ पर बांध दूं? पहले इसके कपड़े धुल जाएंगे, फिर इसको बांध जाऊंगा, फिर दूसरा गधा लेके उसके कपड़े धो लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अरे हम, मैं ये सब करने थोड़े हैं, गधे की ड्यूटी करने, मैं भगवान का भजन करने के लिए आया यहाँ पे। अच्छा ठीक है। तो वो भजन करते रहे और उसने सोचा, इन्होंने स्वीकार कर लिया और पेड़ के पास में गधे को बांध के वो चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो दूसरा गधा लेने आया तो संत अपना भजन कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा, देखा वहां गधा नहीं है, तो उनसे पूछा कि अरे भाई गधा कहाँ चला गया मेरा? तो संत बोले, मैंने स्वीकार कब किया था कि तुम्हारा गधा यहाँ, मैं उसकी रखवाली करूंगा। अरे आप भी अच्छी बात करते हैं, आपको थोड़ा तो सेंस होना चाहिए था। कहा कि अरे तुम सेंसलेस बात हो, गधे के साथ रहकर तुम भी गधे बन गए हो, मुझे नहीं पता तुम्हारा गधा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, खच्चर कहाँ है। तो इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, धोबी ने उनको गाली देना शुरू कर दिया, अब्यूसिव लैंग्वेज। और फिर इतना गुस्सा आया, वो संत भी क्या करने लगे, गालियां देने लगे, तेरी ऐसी की तैसी हो जाए, कॉलर पकड़ लिया उसका, है ना, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, तू गधा तू गधा तू घोड़ा तू गधा तू खच्चर, और एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे थे। बाद में धोबी बोला, जाओ तुम, और फिर वो चला गया। बाद में जब वो भक्त थे उनको बड़ा गिल्टी हुआ, होता है ना, ये भक्त को मैं तो प्रोसेस कर रहा हूँ, भक्ति का ही क्या हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान इतने साल हो गए भजन करते हुए, मुझे यहाँ से उत्तर काशी से वापस धाम क्यों नहीं ले जाते, मैं कब तक बैठा रहूंगा इन सब झंझटों में। तो भगवान बोले कि देखो ऐसा है, 8वीं क्लास के बाद 9वीं क्लास में जाने के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन, 9th से 10th में जाने के लिए एग्जामिनेशन। तो मैं भी तुम्हें हर बार लेने आता हूँ, तो उससे पहले एक पेपर देता हूँ, तो पेपर में तुम हर बार फेल हो जाते हो, है ना। इस बार मैं आया, मैंने एक पेपर दिया, एक धोबी को भेजा, और एक तुम्हारे साथ थोड़ा सा तुम्हारे जो एंगर है उसको टेस्ट किया कि कितना एंगर बाकी है। तो मैंने ये पाया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि धोबी कौन है और साधु कौन है, है ना, दोनों एक जैसा ही व्यवहार कर रहे थे। तो तुम एग्जाम में फेल हो, इसलिए अभी तुम 8वीं कक्षा में ही हो। तो इस तरह से अगर हम सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ना चाहते हैं तो इन सभी चीजों पर विजय प्राप्त करने के लिए हर एक चीज को सिंसियरली लीजिए। हाँ, ये शरीर एंजॉयमेंट के लिए नहीं मिला है, कृष्णा इज द अल्टीमेट एंजॉयर। And if you enjoy with Krishna, then you can advance in Krishna consciousness. है ना? तो इसलिए बोलते हैं डांसिंग टूगेदर. कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आई एंड कृष्णा डांसेस टूगेदर. जब हम दोनों साथ में डांस करेंगे तभी सही मायने में हम एडवांस करेंगे, है ना? तो एडवांस डिवोटी वही है जो कृष्ण के साथ में प्रसन्न रहता है. जैसी स्थिति हो उस स्थिति में प्रसन्न रहे तो वो एडवांस डिवोटी है. एडवांस डिवोटी वो नहीं जो उसी चेयर पे बैठकर बोले और वो नीचे वाले वो खराब डिवोटी. नो, हम वही एडवांस है जो विषम परिस्थितियों में मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में ही कैन मेंटेन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस. ओके, हरे कृष्णा. उत्तरकाशी धाम की, शिव जी की, श्री कृष्ण भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, बद्रीनाथ धाम की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नेताई नेताई गौर हरि प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. सो बिफोर एंडिंग द सेशन मेरे एक मन में एक विचार था कि कल तो शायद हम लोग दोबारा क्लास नहीं करेंगे. फॉर्मली हो सकता है मिल भी लें लेकिन मिल नहीं पाएंगे. तो मैंने तो आपको सुबह बताया कि मुझे आपके साथ कैसा लगा, लेकिन हमें वहाँ सब में कम था तो 5 मिनट आपके लेना चाहूँगा अगर आप देना चाहें तो. हाँ, तो मैं भी सुनना चाहता हूँ कि मेरा व्यवहार कहीं किसी को कष्ट तो नहीं दे. तो आपको मेरे साथ में कैसा लगा तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ताकि मैं अपने ऊपर और प्रयास करूँ, अपने इम्प्रूवमेंट्स पे, अपनी गलतियाँ पे, अपने मिस्टेक्स पे काम कर सकूँ. तो आप लोग बता सकते हैं आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा दोनों तरीके से. तो राधे श्याम प्रोसन शुरू करेंगे. At least few devotees can speak.
हरे कृष्णा गुरु जी. हम अब आए, आपने सब मतलब हमको ये धाम के बारे में बताया और जितने भी सेशन हमारे हुए उसके उससे हमको बहुत मतलब प्रेरणा मिली और हमको बहुत अच्छा लगा. और आपके मतलब हम भी गृहस्थ जीवन में हैं और आप भी गृहस्थ जीवन में, तो हमारे लिए एक मोस्ट इंस्पिरेशनल कैरेक्टर अभी आप बन गए हो. तो हम उससे इंस्पायर है और आगे हम भी कोशिश करेंगे और आगे हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे कृष्णा कॉन्शियस में थोड़े ज़्यादा मोल्ड हो उसके लिए हम कोशिश करेंगे. और जो कल आपने जो डंडा लिया है कि प्रसाद जो है उसके बाद में, तो हमने जो भूल करी है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं. अगली बार कहीं भी मिलेंगे हम पहले कथा सुनेंगे बाद में प्रसाद करेंगे.
अरे निखिल
वो कहते हैं ना प्यासा कुएं के पास नहीं जाता. हमारे साथ ऐसे कुछ हुए, कुआं प्यासे के पास आ गया. बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु आपका, ना एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया आपने हमको कृष्णा भावनामृत के बारे में. और है ना मेरे तो साहब पूरा परिवार माता पिता भाई बच्चे सब ने सुना आपको. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
हरे कृष्णा प्रभु. पिछले 5 दिन जो हमारे साथ आप रहे, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे पहली बार किसी हिंदी प्रीचर से सुनने को मिला. और मैंने तो जैसे आपको सुबह कहा था, मैंने तो आपका वो कुर्ते का नीचे वाला हिस्सा पकड़ लिया है, वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू प्रभु. और एक बहुत बात जो सबके लिए भी शायद अपील की हो कि आपने जिस तरह से भौतिक अपने स्पिरिचुअल लाइफ को और मेटलिस्टिक लाइफ को बैलेंस किया है ना, दैट रियली एन एग्जांपल फॉर ऑल द फैमिली पीपल्स दोज हु आर हियर. थैंक यू प्रभु.
थैंक यू. एनी अदर पटेल प्रभु, एनीबॉडी? पटेल प्रभु जी
सबने बताया दिया प्रभु. अभी तो बोलने के लिए कुछ है नहीं, पर अभी खराब इसलिए लग रहा है कि आप कल हमको छोड़ के जा रहे हो और थोड़े दिन रुक जाते तो पूरा तेरा.
अभी हम लोग आएंगे
जरूर.
हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी जैसा कि अभी राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे, जैसे आप भी गृहस्थ जीवन में हैं और हम लोग भी हैं, तो अब तो सबके लिए आप हमारे आइडियल हैं. और जिस तरह से हम लोग वी वर लकी यस्टरडे दैट वी गॉट अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू गो अलॉन्ग विथ यू ऑन टू यमुनोत्री एंड कम बैक. सो जो पर्सनल डिस्कशन रहा, मतलब इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड वी विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू एंड डेफिनेटली इट विल गिव अ बिग इंप्रूवमेंट फॉर अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस. आई डोंट सी प्रोविज एनीथिंग एंड वी वर ऑल लकी दैट वी गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू hear the Bhagavatam from you and the Ganga Mahatma Jivin. Hare Krishna.
Any Mataji? इसका इच्छा वो हाथ भी खड़ा कर दे
हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमने जो उनको ऑफर दिया उन्होंने स्वीकार किया, अपने बिजी शेड्यूल में वो आए और हमको कथा सुनाई, और हमसे जो बहुत सारी गलतियां हुई है उसके लिए माफी भी चाहूंगी। कितना तकलीफ उठाया, इतना गाड़ी यहाँ से जब वर्कआउट आ रही थी, कितना मुझे तो डर लग रहा था प्रभु कार में आ रहे हैं, तो यही मुझे बहुत डर लग रहा था। और ये पहले दिन आपको लंच नहीं दे पाए, तो बहुत सारी गलतियां हुई मुझसे, तो मैं अपनी गलतियां ढूंढ रही हूँ कि मैंने क्या क्या अपराध किए हैं। क्योंकि हम वैष्णव की तो जितना अच्छे से सेवा की जाए भक्ति वैष्णव से ही मिलती है, उसके लिए माफ करना प्रभु कि हम आपको इतना अच्छे से केयर नहीं कर पाए। और सब लोग आपसे इंस्पायर है, सबकी तरफ से मुझे सबने फीडबैक दिया है, सब लोग आपसे इंस्पायर है। क्यों जोशी प्रभु तो बोल रहे थे कि हमारा आना एकदम सफल हो गया, मतलब हम 3 दिन से कथा सुन रहे हैं, हमारा आना सफल हो गया, माता जी आपको धन्यवाद कि आपने बुलाया, ऐसा करके आज मुझे आफ्टरनून में बोला। और भी लोगों ने बोला कि नहीं इस बार बहुत अच्छी कथा सुनी है। अभी आपको ही हमारी यात्रा अरेंज करनी है, ठीक है? बात कृष्ण प्रभु और आप मिलकर हमारी यात्रा अरेंज करोगे,
आपके आने से हमारी यात्रा में 4 चांद लग गए।
हम आपको आपका शेड्यूल बताएंगे, आप जब भी फ्री होंगे, उधर भी हमको थोड़ा परमिशन लेनी पड़ती है हमारे शिक्षा गुरु से, तो वो जब भी सेट होगा टाइम हम आपको जरूर बुलाएंगे, आप आइए। और आज दिन सब लोग खुश हो जाएंगे कि बहुत सारे हिंदी डिवोटी है, बंगालीज हैं, इवन घाला के लोग जो यूपी के और इससे यूपी और बिहार के लोग काफी लोग हैं, इवन ओमान में 70% लोग हिंदी पीपल है, तो आपके आने से मतलब सब लोगों को बहुत खुशी होगी। यस यस, तो इंग्लिश हिंदी कभी एक इंग्लिश क्लास करेंगे, कभी हिंदी करेंगे, ऐसा कर लिया करेंगे। तो बस यही कि हमारी गलतियों को माफ करें और आपका धन्यवाद करेंगे जो आप आए और हमारा ऑफर स्वीकार किया। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु। आपके आने से पहले ही बलदायिनी माता जी ने जो इन्फॉर्मेशन हमें आपके बारे में दी थी, हम लोगों ने आपके वीडियोस और आपके लेक्चर सुने, उससे ही हम लोग इंस्पायर हो गए थे, और आने के बाद तो सोने पे सुहागा हो गया। आप हम लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन हो ही गए एक्चुअली, और खास तो जैसे आज आपने डिस्कस किया कि बच्चे, अब बच्चे भी सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को है, हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, बट वी आर फॉलोइंग ट्राइंग, बट जो हमारे बच्चे हैं अगर वो आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक है। तो हमें तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले टाइम में आप बच्चों के लिए, जैसे आपकी वीडियो अभी तक जो मैंने देखे हैं उसमें बच्चों के लिए स्पेशल कुछ नहीं देखा है, अगर आप बच्चों के लिए कुछ स्पेशल वीडियो देंगे तो वी कैन, जैसे हम लोग बच्चों को अपने वॉइस मैसेज भेजते हैं, वी कैन सेंड टू चिल्ड्रंस आल्सो, सो दे विल इंस्पायर मोर, बिकॉज जैसे आज आपने बच्चों की लिया तो दे आर लाफिंग, दे आर एंजॉयिंग, एंड मे बी दे विल फॉलो आल्सो। और मैं ट्राई करूंगी जो आपने आज बोला है ऐप, वैष्णवा अपराध अवॉइडेंस फॉर्म, वो मैं सब बच्चों को, अपने बच्चों को तो मैं ऐप डाउनलोड करवा ही दूंगी और खुद भी करेंगे, और हम लोग विल ट्राई टू फॉलो दैट ऐप प्रभु। एंड थैंक यू वेरी मच प्रभु, जैसे प्रभु ने बोला हिंदी कि जो भाषा आपकी सरल शुद्ध और मधु थी वो हम कभी नहीं भूल सकते प्रभु, एंड वी विल मीट यू इन मस्कट प्रभु। हरी बोल, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु, सबने सब कुछ बोल दिया है, मेरे लिए कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं, आई हैव नो वर्ड्स। अब सबने बहुत एंजॉय किया, हम सब बहुत खुश हैं, हमें इतना कुछ सीखने को मिला, अगर आप नहीं होते तो हम ये यात्रा इतनी एंजॉय नहीं कर पाते। हर जगह का इम्पोर्टेंस, हम यमुना पे गए, यमुनोत्री पर, सब कुछ आपने बताया, गंगा जी के बारे में बताया, चार धाम यात्रा के बारे में बताया, हम सब भक्तों को आशीर्वाद दीजिए प्रभु, हम भक्ति में बहुत आगे बढ़े प्रभु।
प्रभुपाद जी का गांव है, हमारा गांव है
प्रभु, आप भी प्रभु, आपकी ब्लेसिंग भी मस्त है, आप भी हमें ब्लेस करिए, वो तो हमसे तो हम रोज ही लेते हैं ब्लेसिंग, बताया नहीं बना दिया, तो प्रभु आप भी हम सबको ब्लेस करिए प्लीज, कि हम भक्ति में आगे बढ़े और प्रभुपाद का मिशन हम अच्छे से आगे से
I will pray for all of you that you all can grow in Krishna consciousness under the shelter of
Hari
Bhagavan. Hari
Bhagavan. Hari Bhagavan.
Hare Krishna. So we are so fortunate to have His Grace Prashant Mukund Prabhu for us for this Chardham Yatra. The only unfortunate situation is that he is leaving us tomorrow.
Yes.
But we will definitely remember His wonderful nectarian Krishna Katha, which will be ringing in our ears throughout the Yatra. So we are very grateful to Him. So on behalf of our Siksha Guru, His Grace Venugopal Prabhu and Our Grace Prabhupadmini Mataji, and Our Grace Rupa Chaitanya Prabhu and Our Grace Baladayani Mataji, we give our heartfelt gratitude and sincere prayers so that His mission to fulfill His Guru Maharaj instruction and Srila Prabhupada mission will keep Him, as you all know, He is having a project, it will become very nearly it will come, and then all Matsuradesh devotees will come to Radha Dwarakadesh temple, Rukmani Dwarakadesh temple, and we will stay in the Delhi in the temple. Prabhuji will arrange all the arrangements for us, and next Chardham Yatra will accompany us throughout the Yatra. Thank you so much, Prabhuji, we'll miss you, but definitely this wonderful, for the last 3 days we enjoyed a lot of nectarian katha from you. Thank you so much. Hari Bol.
I just want to thank Mukund Bhai Prabhu for giving me a very nice inspiration that being such a nice leader, I found him that he is managing so many things, but he never spoke any word. So without speaking, he manages, so I learned from him. So this is so that is very important, because people like me who do less and speak more, so I have learned that I should speak less and should do more. Thank you, Prabhuji, for giving inspiration to us. Oh, Hare Krishna. Thank you, Mataji. We can do one more kirtan and dance.
10 minute
और है. तो वैसे तो रोज मेरी कथा ज्यादा लंबी होती थी, आज मैंने जल्दी छोटा किया तो अभी और पढ़ा. So anybody else can also speak. कोई बोलना चाहते हैं? Realizations sharing. माताजी बोलिए ना प्लीज.
हरे कृष्ण.
माई ऑब्जर्वेशन हियरिंग प्रभु सर, बिकॉज ओनली थ्रू हियरिंग वी गेट टू नो ए पर्सन. सो इट वॉज रियली वेरी इंस्पायरिंग टू हियर दैट यू सैक्रिफाइज यूर बिग करियर फॉर गुरु सेवा. सो दैट इज लाइक biggest example that you have already set for everyone, and your focus and your attachment to Prabhupada's writings is which we all have to learn. Being a grahastha, you are still in touch with all the scriptures, and so it is like taking notes, and so these are the things that we have to learn from you.
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद. आपने 4 दिन बहुत अच्छा लेक्चर दिया, और मुझे हेलो हाय के लिए जो आपने बताया बहुत अच्छा लगा. हरे कृष्णा का ध्यान रखेंगे कि हमेशा फोन पे हरे कृष्णा बोलना है. वैसे तो सभी कुछ अच्छा लगा, पर ये खास तौर पर.
हरे कृष्णा प्रभु. मैं पूरे यूथ के बिहाफ में बोलता हूँ. तो आपके साथ एसोसिएशन में बहुत अच्छा लगा हमें. आपके जो कथा सब सुने हमने, हम उससे बहुत इंस्पायर हुए, और आपका जो हाई हेलो का जो आपने बताया उसको हम फॉलो करेंगे और हरे कृष्णा बोलते रहेंगे.
हरे
कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. आपने प्रभु जी, आप भी गृहस्थ और हम सब भी गृहस्थ है, तो आपने आप इधर आए अपना बिजी शेड्यूल तोड़ के और हमें इतनी अच्छी अच्छी कथा सुनाई, तो हम लोग हमेशा रीजन निकालते रहते हैं कि हम गृहस्थ हैं तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, हस्बैंड की, घर की, डेटी वर्शिप की, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मगर आप इधर आए और आपने हमें जो मतलब डेली कथा सुनाई, तो इससे हम बहुत इंस्पायर हुए हैं। हमने सुना था प्रभु भागवतम में कि सबसे ज्यादा भगवान को अगर कोई जान सकता है तो गृहस्थ है, अपनी बाहर महाजन है, उसमें सबसे ज्यादा मेजोरिटी गृहस्थ की है। हमने सुना था, मगर आज आप आए तो हमने देख भी लिया और महसूस भी कर लिया कि गृहस्थ अगर चाहे तो भगवान की सबसे अच्छी सेवा कर सकता है। हरि बोल प्रभु।
Hare Krishna Prabhu, many many thanks to you for coming to this place. Prabhu, I wish ki we could record these lectures. They were wonderful lectures. If anybody has recorded, please share on the group because your lectures were wonderful. I look forward to your lectures. And one more thing is this wonderful. I wish along with the parents.
VA form everybody can see. Yes. Mother ji recorded. I have recorded my lecture. If you want, in tomorrow morning you all can copy from my laptop. There are files that I can give you.